आज का शीर्षक है, क्या कर्म ही पूजा है? निश्चित रूप से कर्म ही पूजा है, किंतु प्रश्न है किसकी पूजा? किसी व्यक्ति के कर्म के लक्ष्य के आधार पर उसकी पूजा की विषय वस्तु को जाना जा सकता है। अधिकतर लोगों का कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य धन अर्जित कर इंद्रियों को शारीरिक सुख प्रदान करना होता है, जो सर्वशक्तिमान भगवान को महत्व नहीं देते। ऐसे लोगों की इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती है कि वे उनके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने लगती है। जिस प्रकार एक भक्त सतत चिंतन करता है कि किस प्रकार अपनी पूजा के विषय वस्तु भगवान को संतुष्ट किया जाए, उसी प्रकार ऐसे लोग सदैव सोचते हैं कि किस प्रकार इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए। इसलिए उनकी इंद्रियां उनकी पूजा की विषय वस्तु बन जाती है और इंद्रियों की पूजा ही उनका कर्म बन जाता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो यह देखना चाहते हैं कि वे स्वयं के लिए नहीं अपितु अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, वे न्यूनाधिक उसी स्तर पर हैं, क्योंकि उनका परिवार उनका ही विस्तार है। उदाहरणार्थ, माता पिता अपने पुत्र पर असीमित प्रेम और स्नेह बरसाते हैं, किंतु पड़ोसी या सड़क पर पड़े अनाथ पर नहीं। क्यों? क्योंकि वह मेरा पुत्र है, उसके द्वारा मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। इंद्रियों की ऐसी पूजा का क्या परिणाम होता है? सीमित साधनों और असीमित इच्छाओं से भरे इस संसार में भोग करने की वासना काम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मनुष्य को घातक प्रतियोगिता के मार्ग पर ले जाती है। प्रचार प्रसार के माध्यमों द्वारा होने वाली इंद्र तृप्ति की वर्षा आधुनिक समाज की काम वासना को बेहिसाब रूप से बढ़ावा देती है। कामनाएं बढ़ती है, किंतु भोग करने की सीमित क्षमता और सीमित साधनों के कारण वे अधूरी रह जाती है और परिणाम निराशा ही होता है। असंतुष्ट कामनाएं क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, जो अनेक प्रकार के हिंसात्मक कार्यों में प्रकट होता है और जिस भयानक हिंसा का सामना आज के विश्व को करना पड़ रहा है, वह इंद्रियों की पूजा करने का ही अंतिम परिणाम है। इस प्रकार यदि कर्म इंद्रियों की पूजा करने हेतु है, तो ऐसी पूजा वैश्विक स्तर पर विनाश को बुलावा देने के समान है। फिर ऐसे लोगों का क्या जो अन्यों की तुलना में थोड़े पुण्यवान और दानी है? निश्चित रूप से वे निपट भौतिकवादियों से उच्च स्तर पर है। वे ऐसी इंद्र तृप्ति की खोज नहीं करते, तो उनकी पूजा का उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों का क्या जो कहते हैं, किसी का बुरा ना करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, ऐसे जो तुलनात्मक दृष्टि से दूसरों से अधिक पुण्यवान और दानी हैं, उनकी पूजा का उद्देश्य सूक्ष्म होता है। उनका दान इस इच्छा से प्रेरित होता है कि ऐसा करने पर वे विशाल हृदय वाले उदार व्यक्ति कहलाएंगे। यदि भी उनमें से कुछ गिनती के लोग गुमनाम रूप से दान दे भी, तो भी वे यह सोचकर इंद्र तृप्ति का अनुभव करते हैं कि देखो मैं कितना महान हूँ। यदि भी उनके हृदय में जरूरतमंदों के लिए कुछ चिंता होती है, दान देने का उनका वास्तविक उद्देश्य अपने अहंकार और शक्ति को बढ़ाना होता है। इस प्रकार उनकी पूजा की विषय वस्तु उनका अहंकार होता है। और इस प्रकार अहंकार की पूजा का क्या परिणाम होता है? मान लीजिए एक धनी व्यक्ति गरीबों को मुफ्त में दवाइयां देने के लिए अस्पताल खोलता है। एक बीमार शराबी गंदी बस्ती से वहां आता है और मुफ्त इलाज का लाभ उठाकर स्वस्थ हो जाता है। ठीक होने पर वह पुनः शराब पीकर घर लौटता है और अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अधिकतर भिखारी भीख को नशे में उड़ाते हैं। अपने पेट भरने के लिए उनके पास अलग से साधन होते हैं। यहाँ हम यह नहीं कहना चाहते कि जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए, किंतु अक्सर मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्ति आत्मविनाशी कार्यों को जारी रखते हैं। इस प्रकार अहंकार की ऐसी पूजा किसी को भी शाश्वत लाभ देने में असफल रहती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, पूजा के योग्य कौन सी वस्तु उपयुक्त है? किसकी पूजा से पूजा करने वालों को एवं अन्य सभी को लाभ होगा? जो समस्त प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की पूजा करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक उल्लेख करता है कि भगवान समस्त जीवों के पिता है, उन्हीं ने प्रत्येक का सृजन किया है, न केवल उन्होंने सभी को उत्पन्न किया है अपितु एक उत्तरदायी पिता होने के नाते वे सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गर्मी, प्रकाश, वायु, जल और यहाँ तक कि भोजन भी भगवान ही प्रदान करते हैं। चाहे कोई दावा क्यों ना करे कि वह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, किंतु जिस शरीर और बुद्धि के द्वारा वह कार्य कर रहा है, वह उसे कहां से प्राप्त हुई? भगवान से। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता होने के कारण भगवान ने सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण व्यवस्था की है। इसलिए सभ्य मनुष्य के लिए जो जानते हैं कि भगवान ने उनके लिए क्या किया है और जो उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, भगवान उनकी पूजा की एकमात्र विषय वस्तु है। और भगवान की ऐसी पूजा का क्या परिणाम है? एक परिवार में जहां बच्चे अपने पिता से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम के कारण वे आपसी मतभेदों को भी सहन करते हैं और शांति पूर्वक जीवन यापन करते हैं। किंतु यदि पिता के प्रति गहरा प्रेम नहीं होगा, तो आपसी मतभेदों के कारण परिवार टूट जाएगा। उसी प्रकार जब कोई परम पिता से प्रेम करता है, तो भगवान के प्रति प्रेम के कारण वे उनकी अन्य सभी संतानों से भी प्रेम करता है। इस प्रकार वह सभी जीवों को अपने बंधु के रूप में देखता है और मतभेदों के बावजूद भी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना सीखता है। किंतु जब भगवान की उपेक्षा की जाती है, जैसा कि आधुनिक समय में हो रहा है, लोग आपस में कोई भी समानता ना देख पाने के कारण कलह, लड़ाई और यहाँ तक कि छोटी छोटी बात पर युद्ध तक छेड़ देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बल देते थे कि विश्व में भाईचारा स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता परम पिता या भगवान को स्वीकार करना होगा। तो व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर सकता है? इसके लिए व्यक्ति के कार्य और जीवन का उद्देश्य निश्चित रूप से भगवान ही होना चाहिए। यह तभी संभव है जब व्यक्ति की भगवान के प्रति भक्ति भावना होगी। ऐसी भक्ति भावना स्थिर हो और भावुकता ना हो, इसके लिए व्यक्ति को भगवत विज्ञान को समझना ही होगा, अन्य प्रकार के ज्ञान विज्ञान के ही समान। भगवत विज्ञान का भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू है। सैद्धांतिक पहलू का अध्ययन योग्य आध्यात्मिक वैज्ञानिकों अर्थात ऐसे बुद्धिमान संत जिन्होंने गहराई से आध्यात्मिकता के प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन किया है और अपने जीवन में ध्यान पूर्वक उनका पालन किया है की देख रेख में किया जा सकता है। और व्यवहारिक पहलू में हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के अन्य किसी भी प्रामाणिक नाम के सरल जप और कीर्तन द्वारा अपनी चेतना को भगवान की चेतना के साथ जोड़ना है। एक इच्छुक आध्यात्मवादी अर्थात जो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करना चाहता है, नियमित रूप से साधना करता है, आदर्श रूप से जो प्रातः काल आरंभ होती है, यह साधना आध्यात्मिक चेतना के लिए नींव तैयार करती है, जिसके ऊपर वह दिन भर के कार्यों का निर्माण करता है। मंत्र जप और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा साधक भगवान के प्रति भक्ति विकसित करता है। और जब कोई भक्ति के साथ कर्म करता है, तो तभी और केवल तभी स्वयं कर्म ही पूजा बन जाता है। यह वास्तविक योग है और भगवद गीता के अनुसार जो समस्त कर्मों की कला है। इस सरल विधि के द्वारा कोई भी वैज्ञानिक के लेकर किसान तक, डॉक्टर से लेकर सड़क के झाड़ूदार तक, विद्वान से लेकर गृहिणी तक, कोई भी अपने साधारण भौतिक कार्यों को दिव्य पूजा में परिवर्तित कर सकता है, जो आत्मा की प्रगति में सहायक है। कर्म और पूजा के ऐसे योग से व्यक्ति काम को प्रेम में, लोभ को संतुष्टि में, क्रोध को सहनशीलता में और ईर्ष्या को सम्मान में परिवर्तित हुआ पाता है। व्यक्ति अपने कर्म और अपने जीवन को आनंददायी यात्रा के रूप में पाता है, जिसमें वह प्रत्येक क्षण शांति और संतुष्टि का अनुभव करता है और साथ ही साथ प्रत्येक क्षण जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर होता रहता है। सारांश में कर्म केवल तभी पूजा बनता है जब वह दिव्य चेतना में किया जाए। व्यक्ति ऐसे दिव्य चेतना तभी प्राप्त कर सकता है जब वह विशेष रूप से भगवान की पूजा करे। ऐसे विशिष्ट पूजा के अभाव में कर्म केवल भौतिक कर्म रह जाएगा, जिसका परिणाम होगा बंधन, कष्ट और बारंबार जन्म एवं मृत्यु। हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक मैसेजेस हर दिन आपको प्राप्त होते रहे, तो अपने नाम और शहर के साथ 9987949494 9987949494 स्कॉन डिजायर ट्री के नंबर पे मैसेज करें। धन्यवाद।